अध्याय तीसरा। दुनिया के दूसरे छोर पर बैठा मैं अपने माता पिता को हो रही चिंता का अनुभव कर पा रहा था। निस्सहाय वे अपनी भावनाएं मुझ तक पहुंचा पाने में अक्षम थे। 1.5 साल में मेरे निरंतर भ्रमण में यह बहुत कम था कि मैं एक ही स्थान पर लंबे समय के लिए रहा हूं। इसलिए मैं अपने परिवार को वापसी पते के साथ पत्र नहीं लिख पाया। लंबे समय से मुझे उनका कोई समाचार नहीं मिला था। हाल ही में लिखे एक पत्र में मैंने उन्हें अपने वृंदावन के अनुभव लिखे थे और वापसी का पता भी। मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दोपहर असीम कृष्ण ने मुझे 3 पत्र थमाए। उनकी विषय वस्तु को भांपते हुए मैं उन्हें लेकर यमुना के तट पर आ गया। पहला पत्र मेरे पिताजी का था। उनकी आंखों से बहे आंसुओं ने शब्दों और पूरे परिच्छेदों को धो दिया था। कागज को अपने हाथों में पकड़ने मात्र से मैं उनके दर्द की अनुभूति कर सकता था। क्या किया मैंने अपने माता और पिता के साथ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रत्येक पंक्ति में पिताजी ने मुझे घर लौट आने की याचना की थी। उन्होंने लिखा, प्रत्येक दिन ग्लानि और चिंता से भरा अंतहीन सा लगता है। मैंने तुम्हारे प्रति ऐसा कौन सा जघन्य कार्य किया कि तुमने मुझे त्याग दिया। ये सोचकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ कि मेरा पुत्र जंगलों की गुफाओं में बिना धन के अकेला रह रहा है। नीचे उनके हस्ताक्षर थे, तुम्हारा भग्न हृदय पिता। यमुना के शालीन प्रवाह के पार देखते हुए मैंने उनके साथ साथ अपने हृदय को भी टूटता पाया। तब मैंने दूसरा लिफाफा खोला। वो मेरी माँ का पत्र था। वो जानने के लिए आतुर थी, तुम इतने लंबे समय से परदेश में क्यों हो, क्या तुम्हें अभी तक वो मिला नहीं जिसकी खोज करने के लिए तुम निकले थे, तुम क्या पहनते और खाते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। पूरे पत्र में बार बार उनका प्रेम उमड़ रहा था। तीसरा पत्र लैरी का था, मेरा छोटा भाई और प्रिय मित्र। लैरी एक सच्चा और सरल व्यक्ति था, सो मैं जानता था कि वो सही सही लिखेगा। उसने लिखा कि मैंने अपने पूरे परिवार को असीमित चिंता के सागर में धकेल दिया था। मेरी माँ के बारे में उसने लिखा, क्या तुम माँ के प्रेम को नहीं समझते, माँ हर समय भ्रमित अवस्था में रहती है, निस्सहाय हो वो दिन रात तुम्हारी कुशलता की चिंता करती है। तब उसने पिताजी की हालत का वर्णन किया। पिताजी के बाल अब सफ़ेद हो रहे हैं, जब से तुमने हमें छोड़ा है 1.5 बरस में वे कई बरस बूढ़े हो गए। वे शोक में अंधे हो खोए खोए दीवारों को घूरते रहते हैं। तुम्हें याद कर कि कैसे तुम अकेली गुफाओं और जंगलों में रह रहे होंगे, वे रोने लगते हैं। क्या तुम अपने पिता की हत्या करना चाहते हो, क्या इसे तुम धर्म मानते हो। शायद तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि वे जिए या मरे, किंतु हम उनसे प्रेम करते हैं। यदि तुम घर न लौटे तो तुम उनकी मृत्यु के जिम्मेदार बनोगे। मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। मैंने मन ही मन मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। यमुना के मंद प्रवाह को देखते हुए मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन चित्रित होने लगा। मेरे परिवार ने मुझे जो प्रेम दिया था उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ था और उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहता था। किंतु भगवत प्रेम के प्रति मेरे हृदय में धधकती लगन किसी भी अन्य वस्तु से कहीं अधिक तीव्र थी। मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था कि वे इन सब बातों को समझें। मैं उन महान व्यक्तियों का स्मरण करने लगा जिन्होंने भगवान के प्रति समर्पण में अपने प्रियजनों के हृदय तोड़ने के कष्ट को सहन किया था। भगवान की पुकार सुनकर इब्राहिम अपने प्रिय पुत्र आइज़ैक की बलि देने के लिए तैयार थे। गैथिसमेन में उस पुकार को सुनकर ईसा मसीह ने सूली स्वीकार की, जबकि उनकी माता मैरी सूली के नीचे खड़ी कातरता से रोती रहीं। उनके अनुयायियों ने भी उनकी पुकार सुन अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उसी आंतरिक पुकार को सुन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने प्रिय परिवार को रोता छोड़कर जंगल में चले गए और बुद्ध बन गए। जब भगवान की अंतर्ध्वनि ने आदि शंकराचार्य को पुकारा तो उन्होंने भी अपनी दीन माँ के हृदय को तोड़कर घर का त्याग कर दिया। और हमारे लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी विधवा माँ को आंसुओं के सागर में रोता छोड़ाए। मैंने सोचा, ये संत और अवतार महान हैं और मैं तुच्छ हूँ। फिर भी आध्यात्मिक उत्कंठा की इस पुकार ने मुझे वशीभूत कर लिया है। मैंने पूरा दिन यमुना के तट पर अपने परिवार के लिए और स्वयं के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए बिताया। अगले दिन प्रातः मंदिर प्रांगण में मैं बौन महाराज के चरणों में बैठ गया और उन्हें वे पत्र दिखाए। उन्हें पढ़ते हुए उनकी आंखें भर आईं। लंबे समय तक वे प्रांगण के दूसरी ओर देखते हुए विचारों में खोए रहे। तब वे मेरी ओर मुड़े और बोले, बहुत समय पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने संन्यास स्वीकार कर लिया। इससे मेरे माता पिता को असहनीय कष्ट हुआ। वो मेरे जीवन की एक बड़ी परीक्षा थी। अपने प्रियजनों का हृदय तोड़ना अक्सर वो मूल्य होता है जो हमें पूर्ण भक्तिमय जीवन को स्वीकारने के लिए चुकाना पड़ता है। किंतु तुम देखोगे, समय के साथ साथ वे समझ जाएंगे और तुम्हारे जीवन की सराहना करेंगे, यहां तक कि उन्हें तुम पर गर्व होगा। इसी बीच एक साधु का अपने माता या पिता से मिलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम्हें स्वयं अपना हृदय टटोलना होगा। मैंने अपने पिता को उत्तर में लिखा, आदरणीय पिताजी, दिनांक 14 सितंबर 1971 को लिखा आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर मेरा हृदय वेदना से द्रवित हो गया। मैं जो कहने जा रहा हूं, कृपया उसे अपने कानों से नहीं अपितु अपने कोमल हृदय से सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उसी मार्ग का चुनाव करना चाहिए जिसे वो सबसे पवित्र मानता है। यदि व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चलता जिस पर उसे वास्तव में विश्वास है, तो उसका जीवन सार्थक नहीं रहता। अपने हृदय से मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य उस भगवान को समर्पित जीवन जीना है जो प्रेम पूर्वक हम सभी पर शासन करते हैं। हम उन्हीं भगवान के सेवक हैं। मुझे विश्वास है कि मनुष्य के झगड़ों और कष्टों का मूल कारण इस परम सत्य की विस्मृति है। प्राचीन काल से अब तक समाज में राजनेता, व्यापारी, सैनिक आदि सदा रहे हैं। उनके साथ ही ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़कर धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया। किंतु आज सभी लोग अपनी भौतिक भूख को संतुष्ट करने में इतने मग्न हो गए हैं कि उन्होंने भगवान को भुला दिया है। क्या यह सत्य नहीं है कि सबसे सज्जन व्यक्ति वो है जो नम्र, ईमानदार, सत्यपरायण और सभी जीवों का सम्मान करने वाला है। सच्ची दृष्टि से यही धर्मपरायण जीवन है। मुझे लगता है कि यही वो जीवन है जो मुझे जीना चाहिए। कृपया विश्वास कीजिए कि मैं केवल ऐसा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूं जो द्वेष से मुक्त हो। मेरी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए व्यापार की दुनिया में प्रवेश करने का परिणाम एक ऐसा जीवन होगा जो पूर्णतः निरर्थक और असंतुष्टि से भरा होगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आंतरिक स्वभाव के विरुद्ध कार्य करता है, तो वो स्वयं को ही नष्ट कर लेता है। इस समय में मैं अपने मार्ग के विषय में पूरी तरह से विश्वस्त नहीं हूं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया मुझे कुछ और समय दें जिससे मैं अपनी श्रद्धा को अधिक दृढ़ कर सकूं। उसके बाद हम अवश्य मिलेंगे। मैं आपके संपर्क में रहूंगा। अमेरिका में अनेक माता पिता अपने पुत्रों को 2-4 वर्ष तक सेना में भेजकर उनके विरह में तड़प रहे हैं। जहां उनके पुत्रों ने ऐसे कारण के लिए अपना जीवन जोखिम में डाला जिसकी जड़ें घृणा में दबी हैं। मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करता हूं कि आप विश्वास रखें कि मैं जिसकी खोज में हूं, वो सबके भले के लिए ही है। धन्य हैं आप मेरे वत्सल पिता, और धन्य हैं आपका ऐसा कोमल हृदय। मैं शीघ्र ही आपको अपनी अगली योजनाएं बताऊंगा। बहुत शीघ्र, रिचर्ड, वृंदावन, भारत, 30 सितंबर 1971। अपनी माँ को भेजे पत्र में मैंने अपने खाने पीने और कपड़ों के बारे में लिखा, उन्हें ये विश्वास दिलाते हुए कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा था, और समझने का प्रयास किया कि जीवन का सच्चा अर्थ ढूंढने के लिए मैंने ये जीवन शैली अपनाई थी। मैंने उनकी प्रेम भरी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनके लिए शांति की कामना की। मैं जानता था कि वे मेरी आंतरिक पुकार को नहीं समझ सकते थे। मेरे बचकाने शब्दों ने निश्चित ही उनकी पीड़ा में वृद्धि की होगी, किंतु मुझे सरल सा विश्वास था कि भगवान मेरे हृदय को समझते थे और वे उनकी सहायता करने के लिए अपना स्नेह भरा हाथ अवश्य आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है।